नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहां खुश है।
जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके हैं 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।